मैं रियली लव यू, प्लीज मेरे वजह से जिंदगी से मुंह मत मोड़ो, वापस लौट आओ। सबके सामने तो शान ने खुद को संभाल लिया, पर अब जब यहां सिर्फ वो और आरवी थे और वो अपने दिल की बात, अपनी तड़प बयां कर रहा था, तो उसकी आंखों से ना चाहते हुए भी आंसू बहने लगे, जो आरवी की आंखों और चेहरे पर मेघ की बूंदों सी बरस रहे थे। आरवी की पलकें हल्की हिली और कुछ पल बाद धीरे से उसने अपनी आंखें खोली, जिसका एहसास शान को ना हो सका। उसने आगे बोलना जारी किया, आई एम सॉरी आरवी, सही कहती थी तुम कि नफरत की इस आग में मैं अपना सब कुछ बर्बाद कर लूंगा। देखो आज मुझे, मेरा परिवार मुझसे नफरत करता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है। अपने बदले के लिए तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हारे खरीद गया। मेरी मोहब्बत यहां बेजान लेटी है, और मेरा बच्चा, उसके तो होने का पता ही मुझे तब चला जब वो हमारी दुनिया में आने से पहले ही दुनिया से चला गया। मैं कुछ भी नहीं कर सकता तुम्हारे और हमारे बच्चे के लिए। मैं तुम्हें सेफ रखने के लिए खुद से दूर रख रहा था, फिर भी तुम मोहरा बन गई। पर इस बार मैंने कुछ नहीं किया था, बल्कि वो अश्विन शेखावत इन सब की वजह है। अगर वो जिंदा होता तो मैं ऐसी मौत देता उसे कि उसकी रूह कांप उठती। आई एम सॉरी आरवी, प्लीज उठ जाओ, बस एक मौका दो मुझे सब ठीक करने का। हम शुरू से सब शुरू करेंगे, मैं तुम्हें कभी उदास नहीं होने दूंगा। बस एक बार उठकर कह दो कि तुमने मुझे माफ किया, वरना ये घुटन जान ले लेगा मेरी। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। मैं ही मनहूस हूं कि जिससे भी प्यार करता हूं वो मुझे छोड़कर चला जाता है। कम से कम तुम तो मत जाओ मुझे छोड़कर, मैं नहीं जी सकूंगा तुम्हारे बिना। बस एक बार अपनी आंखें खोल दो, चाहे तो मत बात करना मुझसे, नाराज रहना मुझसे, मैं तुम्हारी नाराजगी सह लूंगा, तुम्हारी हर शिकायत दूर करूंगा, तुम्हें बहुत प्यार करूंगा, बस तुम ठीक हो जाओ। शान अपने ही धुन में बोला जा रहा था और आरवी अधखुली आंखों से उसको देख रही थी। बच्चे वाली बात सुनकर उसकी दूसरी हथेली उसके पेट पर चली गई और वो मन ही मन रो पड़ी। बहुत रोकते रोकते भी उसकी आंखों के कोरों से आंसू की एक बूंद फिसलकर उसकी कनपट्टी को भिगो गई। बहुत मुश्किल से उसने खुद को बिफरने से रोका और नम आंखों से कुछ पल शान को देखने के बाद, जैसे ही उसको शान की आंखें खोलने का एहसास हुआ, उसने तुरंत पलकें झुका ली। शान ने आंखें खोली और बहुत ही प्यार से उसकी आंखों और चेहरे पर ठहरी आंसू की बूंदों को साफ कर दिया। फिर उसने प्यार से उसके माथे को चूमते हुए एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल यूं ही आरवी को महसूस करता रहा, फिर सीधे रूम से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर आरवी ने अपनी आंखें खोलकर उस दिशा में देखा, फिर वापस पलकें झुकाते हुए अपना चेहरा फेर लिया और आंखों से आंसू की बूंद बह निकली। इस बात से बेखबर कि आरवी को होश आ गया है, शान परेशान सा वापस बाहर आकर बैठ गया। अब समय वापस कुछ पीछे जा रहा है। हॉस्पिटल से सब लोग घर पहुंचे। छाया अंशु को पहले ही सुला चुकी थी। सुभाष जी ने वहां जो हुआ सब कुछ सबको बता दिया, जिससे सावित्री जी और अमरजीत जी के बारे में उनकी गलतफहमी दूर हो गई। सावित्री जी सर झुकाए से सक रही थी। सुयश जी को आज अपनी सोच और सावित्री जी के बारे में अतीत में कही बातें याद करते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, पर गलती उनकी भी नहीं थी। जो दिखाया गया उन्होंने उसे ही सच माना, पर रिश्तों में विश्वास होना चाहिए था, जो उस वक्त किसी ने नहीं किया था सावित्री जी पर। इसका दुख और पछतावा सभी को था। अर्पिता जी सारी बात सुनकर कुछ पल बुत बनी बैठी रही। सच्चाई ऐसी होगी इसकी कल्पना भी नहीं की थी किसी ने, इसलिए उन्हें कुछ वक्त लग गया इस हकीकत को स्वीकार करने में और इस सदमे से बाहर आने में। फिर वो उठकर खड़ी हो गई और सावित्री जी के पास आ गई। उन्होंने उनके आगे हाथ जोड़ दिए और भारी गले से बोली, हमें माफ कर दीजिए सावित्री, हमने आप पर विश्वास न करके उस झूठे वीडियो पर भरोसा किया और जाने क्या कुछ नहीं कहा आपको। हम गलत थे, हमें आपके सतीत्व पर शक नहीं करना चाहिए था। आप पर चरित्रहीन और धोखेबाज होने का आरोप नहीं लगाना चाहिए था, हमें माफ कर दीजिए। सावित्री जी ने अवसर उठाकर उन्हें देखा। ये जानकर तकलीफ तो उन्हें भी बहुत हुई थी कि किसी ने भी उन पर विश्वास नहीं किया, पर अब अतीत की बातों को कुरेद कर किसी को कुछ हासिल नहीं होने वाला था सिवाय दर्द के। उन्होंने एक गहरी सांस ली और उठकर खड़ी हो गई। फिर उनका हाथ थाम कर नीचे करते हुए बोली, आप माफी मत मांगिए दीदी, गलती आपकी नहीं, तब हालात ही ऐसे थे। आपके जगह अगर कोई भी होता तो वही करता जो आपने किया। दोष हमारे नसीब का है जो अपने पति के प्रति पूरी तरह समर्पित होने के बावजूद एक पराए मर्द ने हमारा स्पर्श किया और हमें चरित्रहीन ठहरा दिया गया। दोष हमारा था कि हमारे पूर्ण निष्ठा से पत्नी धर्म का पालन करने के बावजूद हम पर उसकी कुदृष्टि पड़ी और हमारे सतीत्व पर आरोप लग गए। हमारी इच्छा के विरुद्ध मान भंग किया गया हमारा और हमारे ही दामन पर पच्चलन होने का दाग लगा दिया गया। सावित्री जी ये कहते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। अर्पिता जी उनके दर्द की कल्पना भी नहीं कर पा रही थी। उन्होंने उन्हें अपने गले से लगा लिया। सालों से जो दर्द उन्होंने अपने मन में दबाया हुआ था आज आंसुओं के रूप में बाहर आ रहा था। जब उनका मन का गुबार कम हुआ और वो कुछ शांत हुई तो अर्पिता जी से अलग हो गई। सुयश जी जो कब से खामोश बैठे आत्म मंथन कर रहे थे वो उठकर सावित्री जी के पास चले आए और शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए बोले, हमारे गुनाह माफी के काबिल तो नहीं, फिर भी हो सके तो हमें माफ कर दीजिए और अब अपने परिवार को वापस संभाल लीजिए। आप माफी मत मांगिए भाई साहब, आप सबकी कोई गलती नहीं है। जब हमारे पति ने ही हम पर विश्वास नहीं किया तो आपसे हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। हमें किसी से कोई शिकवे शिकायत नहीं, हमारे नसीब में जो लिखा था वो हमने भोग लिया। दोष सिर्फ हमारा था और हमारी खूबसूरती का था जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सावित्री जी की बात सुभाष जी के सीने को भेद गई पर वो इस वक्त कुछ बोल ना सके। नहीं सावित्री, तुम्हारा कोई दोष नहीं था। दोष जिसका था उसको उसके गुनाहों की सजा भी मिल चुकी है। पुरानी बातें भूल जाओ और अब अपने परिवार को संभालो, उन्हें जरूरत है आपकी। हम चाहकर भी आपके जैसी परवरिश नहीं दे सके शान को, आपकी गृहस्थी को नहीं संभाल सके। अब आप अपनी जिम्मेदारियां संभाल लीजिए, आपसे बेहतर उन्हें कोई नहीं संभाल सकता। जाइए, जाकर हाथ मुंह धो लीजिए, फिर साथ बैठकर खाना खाएंगे। अर्पिता जी और सुयश जी ने बारी बारी उनके सर पर हाथ फेरा और वहां से चले गए। अब वहां सिर्फ सुभाष जी और सावित्री जी ही थी। सावित्री जी सर झुकाए खड़ी थी। सुभाष जी उनके पास चले आए और उनके बर्फ सी ठंडी हथेली थामते हुए बोले, आप हमें गलत समझ रही हैं सावित्री, हमें विश्वास था आप पर कि हमारी सावित्री कभी हमें धोखा नहीं दे सकती। हम ढूंढने आना चाहते थे आपको पर लाचार थे। उस एक्सीडेंट के बाद हम तो बच गए थे पर अपनी चलने फिरने की शक्ति खो दी थी हमने। उस वीडियो पर भी विश्वास नहीं हो रहा था और हम अपनी सोचने समझने की शक्ति खो चुके थे। बहुत कोशिश की कि विश्वास कर ले सबकी बातों पर, लेकिन हमारा मन कभी नहीं माना। हमें पूरा विश्वास था आप पर कि आप कभी वो सब नहीं कर सकती। हम तो यहां थे ही नहीं। उस दिन के बाद दुनिया से नाता टूट गया था हमारा। मरना चाहते थे कि उस दर्द और घुटन से आजादी मिल जाए, पर शान को अनाथ नहीं कर सकते थे, इसलिए आपके बिना जिंदगी काटते रहे। सबने कहा कि आप हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी हैं, फिर भी हर पल आपके आने की राह देखते थे। और आज परसों बाद हमारा इंतजार खत्म हुआ है। अब हम आपको कभी खुद से दूर नहीं जाने देंगे।
हमें माफ कर दीजिए सावित्री, हम आपको अश्विन की बुरी नजर से बचा नहीं सके और ना ही सबको आपको दोषी ठहराने से रोक सके, पर हमारा मन जानता है कि हमने कभी आपके सतीत्व पर शक नहीं किया। अगर हम ठीक होते तो कुछ भी करके आपको ढूंढ निकालते, पर हम तो खुद बेबस और लाचार थे। आज अगर हम अपने पैरों पर खड़े हैं तो सिर्फ आरवी के वजह से, और आज हम सालों बाद आपको देख पा रहे थे तो वो भी सिर्फ आरवी के वजह से। पता है आपको, सबने आप पर शक किया, आपका अपना बेटा आप पर विश्वास नहीं कर सका, जिसमें कहीं ना कहीं गलती हमारी भी थी। ये नफरत उनके दिल में हमारे वजह से भरी और हम चाहकर भी उन्हें आपसे नफरत करने से रोक नहीं सके। पर आरवी सब जानकर भी आपको निर्दोष मानती रही, बहुत प्यारी बच्ची है। आपकी गृहस्थी को उन्हीं ने संभाला है, पर उस बच्ची ने भी बहुत कुछ सहा है। हम तो चाहकर भी ना शान को सही रास्ता दिखा सके और ना ही आरवी के दुखों को कम करने का उपाय कर सके, पर अब आप आ गई हैं तो सब ठीक कर देंगी, जानते हैं हम। अब आप आ गई हैं तो संभाल लीजिए अपनी जिम्मेदारियां, क्योंकि आपके अलावा कोई इन्हें नहीं संभाल सकता। अतीत को भूल जाइए और बस आज को जीने की कोशिश कीजिए। सावित्री जी तड़पती हुई उनके सीने में समा गई और सुबकते हुए बोली, गलती आपकी नहीं, हमारी है। हमें उस रात यूं नहीं जाना चाहिए था। अगर हम मुंह छुपा कर ना भागते तो इतना कुछ ना हुआ होता, पर उस वक्त हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। खुद से नफरत हो रही थी हमें। आपके अलावा किसी ने हमें छुआ ये सोचकर ही घुटन महसूस हो रही थी, और हम अंत कर लेना चाहते थे उस देह का जिसे अश्विन ने अपने नापाक हाथों से छूकर दूषित कर दिया था। हम तो बेसुध से बस चले जी रहे थे। उसके बाद हमारा एक्सीडेंट हुआ, पर हम मरे नहीं। होश आने में एक महीना लगा, और उसके बाद भी हम कभी वापस आने की हिम्मत नहीं कर सके। अगर तब हमने थोड़ी ही हिम्मत दिखाई होती तो न भाई साहब और इस परिवार के बीच दुश्मनी पनपती, ना शान की नफरत इतनी बढ़ती, ना आरवी की जिंदगी खराब होती, और ना ही हमें गलत समझा जाता। हमारे उठाए एक कदम ने सबकी जिंदगियां बर्बाद कर दी। सब कुछ बिखर गया। जो हुआ गया उसे भूल जाइए, क्योंकि उसे बदला नहीं जा सकता। अतीत की गलतियां सुधारना हमारे बस में नहीं, पर भविष्य को तो हम सुधार सकते हैं। तो बस अब आने वाली जिंदगी पर ध्यान दीजिए, और जो बिखर गया है उन्हें संभालने की कोशिश कीजिए। चलिए अब हाथ मुंह धो लीजिए, फिर खाना भी खाना है। आज सालों बाद हम अपनी अर्धांगिनी के संग बैठकर खाने का आनंद लेंगे।